कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
उस काल को देखकर अर्जुन आंखों देखा बता रहा है। कि ये सभी सिद्ध देवता लोग, ये सभी सिद्ध और समुदाय, सिद्धों के टोल समुदाय यानी झुंड के झुंड, और ये महर्षियों के झुंड आप में समा रहे हैं, आप सभी को खा रहे हो, और वो आप ही की स्तुति कर रहे हैं। वेदों के बढ़िया स्तोत्र जो ये गायत्री मंत्र बोलनी है, भूर भवय स्वय तत्सवितुर कहते, ये तेरे गुणगान करें, ये ओम भूर भवय स्वय भी कर रहे हैं, हरिन भी इनको भी खा रहा है तू। तो ये कहता, मैं तो काल हूं भाई, सबको खाऊंगा। अब क्या बताते हैं, और क्या बता रहे हैं देखिएगा, यही गीता जी के अध्याय नंबर 11 के अब 22वां श्लोक कर देखो। ये 11 अध्याय 11 और श्लोक ये 22 है, ये 22 है। अब ये तो आपने 21वां पढ़ा है कि वे ही देवताओं, ये 21वां पढ़ा आपने, वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं, कुछ भयभीत होकर काल से डर कर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं, तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों की स्तुति करते हैं। और ये देखो, जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों के समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं, भयभीत होकर आश्चर्यचकित देख रहे हैं। वे महाभाव, हे महाभाव, आपके बहुत मुख और नेत्र वाले, बहुत हाथ, जांग और पैरों वाले, उदरों वाले बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, तथा मैं भी व्याकुल हूं। अब अर्जुन जैसा योद्धा भी डर गया उस ऋषि गुंडी सकल को देख करके। अब देखिए 24वां श्लोक इसी का, यहां क्योंकि हे विष्णु, क्योंकि अर्जुन जो है इसको विष्णु कृष्ण मान रहा था, हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाला दीप्तिमान, आपके गुणों वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं डरा हुआ धीरज और शांति नहीं पाता हूं। होय होय होय, अपने आत्मा, ये काल है, श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके ये काल बोल रहा था गीता जी को, ये ब्रह्म बोल रहा था, अक्षर पुरुष बोल रहा था, और इसको, इस काल को देखकर अर्जुन जैसा योद्धा भी कांप रहा है, सब सिद्ध पुरुष भी डरे हुए हैं, घबरा रहे हैं। तो वो काल उस परमात्मा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है, कबीर परमेश्वर के सामने, मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु हरदम साथी है। अब उस परमात्मा ने कितने किस किस को जीवित किया, किन किन को जीवन दान दिया जिनका जीवन शेष नहीं था, और कितने उस मोरध्वज तामरध्वज जैसी लीलाएं भी प्रभु ने करके दिखाई। सम्मन के पुत्र सेव अर्थात शिव को जो सम्मन ने काट के अपने हाथों से और डाल दिया था, उस पूर्ण परमात्मा ने जीवित किया। ये तो पैरेलल उसके समानांतर लीला है जो श्री कृष्ण और विष्णु के, आप समझिए। उसके अतिरिक्त मुर्दों को जीवित किया परमात्मा ने, जो कब्रों में दबा दिए गए थे, जल प्रवाह कर दिए गए थे, जिनकी आयु शेष नहीं थी उनको भी आयु बढ़ाई। रामानंद की आयु शेष नहीं थी, प्रभु ने अपनी कृपा से उसकी आयु बढ़ाई। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। ग्यावन गऊ काट के डाली कैसी करी डठाई, कह सिकंदर इसे जीवित कर दे जब मानो तेरी खुदाई। ग्यावन गऊ काट के डाली कैसी करी डठाई, कह सिकंदर इसे जीवित कर दे तब मानो तेरी खुदाई। माँ बेटा गऊ बच्छा तत्काल जवाई फिर दूध दुहाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। इंद्रमती पर काल झपट्या सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने सत कबीर दुआई। इंद्रमती पर काल झपट्या सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने सत कबीर दुआई। सिकंदर की जलन बुझाई वो तो कराम आती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। बिजली खान पठान सुलझाया और अब्राहम सुल्तानी, हिंदू राजा वीर सिंह ने सिख गुरु की मानी। बिजली खान पठान सुलझाया और अब्राहम सुल्तानी, हिंदू राजा वीर सिंह ने भी सिख गुरु की मानी। वेद कतिब कह एक कहानी कोई जात न पाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। जो चाहे सो कर दे सतगुरु, भरम पड़ो मत कोई, सेऊ दड़पे शीश चढ़ाया पीछे करी रसोई। जो चाहे सो कर दे सतगुरु, भरम पड़ो मत कोई, सेऊ दड़पे शीश चढ़ाया पीछे करी रसोई। माँ बेटे की चुरासी खोई या कथा बताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। जगन्नाथ का मंदिर बचाया, जल्दि न करी चढ़ाई, साहेब कबीर के तेज के आगे फीका पड़ गया भाई। जगन्नाथ का मंदिर बचाया, समुद्र ने करी चढ़ाई, साहेब कबीर के तेज के आगे फीका पड़ गया भाई। विपर रूप धर दई दवाई, मेरी नई पार बसाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी। मूर्ख मनवा काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पर डाला पानी, जगन्नाथ के पंडे के पैर की अपड़गी आग बुझानी। राज दरबार में साहेब कबीर ने अपने पैर पर डाला पानी, जगन्नाथ के पंडे के पैर की अपड़गी आग बुझानी। दूत भेज के बुझी कहानी, जो की त्यो ही पाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। उबलते तेल के बर्तन में डाले बंदी छोड़ कबीर, शेख तकी कह मंत्र से तेल की, इसने ठंडी करी तासीर। उबलते तेल के बर्तन में डाले वह बंदी छोड़ कबीर, शेख तकी कह मंत्र से इसने तेल की ठंडी करी तासीर। डाली उंगली ना सही पीड़, सिकंदर को मूर्छा आ जाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। साहेब कबीर को काटन चाला वो शेख तकी जलील, आर पार तलवार निकल जा फिर भी समझा नहीं खलील। साहेब कबीर को काटन चाला वो शेख तकी जलील, आर पार तलवार निकल गई तो भी समझा नहीं खलील। भाग गया ना लाई ढील, साहेब को हंसी आ जाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। शेख तकी ने जुल्म किए बावन करी बदमाशी, खुन्नी हाथी आगे डाले वे बांध चूड़ अविनाशी। शेख तकी ने जुल्म गुजारे बावन करी बदमाशी, खुन्नी हाथी आगे डाले वे बांध चूड़ अविनाशी। हाथी डर से भाग जासी, दुनिया गुण गाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। झूठा प्रचार किया किसी मूर्ख ने, कबीर करे भंडारा, दो रोटी का साधन नहीं था वह भेख जुड़िया अतिवारा। झूठा प्रचार किया किसी मूर्ख ने, कबीर करे भंडारा, दो रोटी का साधन ना थे भेख जुड़ा अतिबारा। बन आया के सो बन जारा, यो होता ही माती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। जीवा दत्ता ने सूखे खूंट पर ले परीक्षा बारी, साहेब कबीर के शरणामृत से हरी हुई वो डारी। जीवा दत्ता ने सूखे खूंट पहले ही परीक्षा बारी, साहेब कबीर के शरणामृत से हरी हुई वो डारी। कबीर बट नाम से जाता पुकारी, दुनिया देखन जाती है सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है, मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। रविदास कबीर हाथी चढ़ चाले, संगले ली गण का माई, गंगो तकसी सी में भरके मदरा जो पीवे वाई। रविदास कबीर हाथी चढ़ चाले, संगले ली गण का माई, गंगो दक्षी सी में भरके मदरा जो पीवे बाई। 64 लाख ने भगती गवाई, मूर्ख को न प्रतीत आती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है, मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। गुरु रामा राम देवानंद जी ने दया करी, प्याराम नाम का प्याला सतनाम का मंत्र देके किया ज्ञान उजियाला। स्वामी राम देवानंद जी ने दया करी, प्याराम नाम का प्याला सतनाम का मंत्र देके किया ज्ञान उजियाला। चरणा के मारे राम पाला, अब भक्ति मन बाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है, मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। सत साही पुण्यात्माओं, कहते हैं गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, और सोए गुरु बंद ये जो शब्द लखावे दाओ। गुरु प्रत्येक को गुरु कहा जाता है, जो कोई भी दिशा दर्शन दिग्दर्शन कराता है, लेकिन उन गुरुओं में अंतर होता है। गुरु सोहे सत ज्ञान सुनावे, और ज्ञान कछुका और गुरु कोई काम न आवे। गुरु सोहे तत्व ज्ञान सुनावे, और गुरु कुछ काम न आवे। कि जिस प्रकार गुरु तो बहुत से होते हैं, उनको भी गुरु कहा जाता था, उनको महर्षि भी कहा जाता था, जिनको ना वेदों का ज्ञान, ना अपने सदग्रंथों का ज्ञान, ना कोई भक्ति विधि का ज्ञान था उनको। अभी आपने सुना ज्ञापन गऊ काट कर डाली, कैसी क्री डिठाई, और कैसे सिकंदर इसे जीवित कर दो, जब जान मानू तेरी खुदाई। परमात्मा कबीर परमेश्वर तत्व ज्ञान समझाया करते थे। हिंदू और मुसलमानों के उन नकली मार्गदर्शनों को, दर्शकों को, गुरुओं को कहा करते थे कि तुम शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं समाज को दे रहे हो, जिस कारण से तुम समाज का अपकार कर रहे हो, उपकार नहीं कर रहे हो। इन बातों से वह क्षुब्ध होकर के और प्रभु के शत्रु बन गए कि ये हमारी इंसल्ट कर रहा है, हमारी बेइज्जती कर रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप एक बार सिकंदर लोधी राजा, जो दिल्ली के बादशाह थे, भारतवर्ष के जो सम्राट थे उसके अंतर्गत अन्य छोटे राजा लोग आया करते थे। तो काशी का नवाब वीर सिंह बघेला, वीर सिंह बघेल वो काशी के नरेश थे, जो दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत आते थे, उनके शासन के वो उनके जो है अंतर्गत थे, छोटे राजा थे। सिकंदर लोधी वहां चले गए थे, साथ में एक शेख तकी नाम का उनका धार्मिक गुरु था, जो कि भारतवर्ष के जितने भी मुसलमान भाई थे उन सब का वो मुखिया था, वो मुख्य पीर था और वही राजा के साथ रहा करता था। राजा उनके उसको उसके संकेत से ही सर्व कार्य किया करता था, क्योंकि धार्मिक लोग होते थे सभी और वो गुरुओं के ऊपर पूर्ण विश्वास करते थे, अंधविश्वास करते थे, और जो भी शेख तकी अपनी जनता को अपने अनुयायियों को कह देता था वो फाइनल होती थी। राजा भी इसलिए राजा भी विवश था उस पीर के को साथ रखकर उसकी हर आज्ञा का पालन करने में। परमात्मा कबीर जी के जो शत्रु हुए हुए थे वो अज्ञानी गुरु पीर काजी मुल्ला, उन्होंने सिकंदर लोधी के सामने उल्टी सुलटी झूठी कथाएं सुनाकर परमात्मा कबीर जी की जो है शिकायत की, कंप्लेंट कर दी। क्या क्या बताया कि वो मुसलमान धर्म को गलत बताता है, हमारी कुरान को गलत बताता है, हमारे हजरत मोहम्मद को नबी नहीं मानता है और वो अपने आप को खुदा कहता है, भगवान कहता है, हमारी बेइज्जती करता है, नाक में दम कर रखा है, वो बदमाश व्यक्ति है, पता नहीं क्या क्या झूठ बोल दी। अब सिकंदर लोधी भगवान से डरने वाला था, उसने सोचा भी ऐसी कोई बात चर्चा चली है, इनके काबू में नहीं आ रहा ना, तो ये गढ़ने दो। उसने देखो बुद्धिमान लोग होते हैं राजा और भगवान से डरने वाले भी होते थे। उस सिकंदर लोधी ने विचार किया कि यदि ये छोटा मोटा व्यक्ति होता तो ये इतने जो पीर और काजी ने इसकी साथ वैसे सामत ना देते, कोई न कोई बात अवश्य है। सिकंदर लोधी को भी थोड़ा डर है, भगवान से डरने वाला था, उसने सोचा कि पहले परीक्षा लेता हूं, यदि वह परीक्षा में सफल हो गया तो फिर मैं पाप का भागी नहीं बनूंगा। इस दृष्टिकोण से सिकंदर लोधी ने कहा कि जाओ उसको बुलाकर लाओ, पकड़ के लाओ, 10 सिपाही भेजे शेख तकी ने कि जाओ उस एक बालक एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए 10 सिपाही गए और साथ में उनके माता पिता को भी पकड़ लाए। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि तू अपने आप को अल्लाह कहता है, खुदा कहता है, अपने आप को नबी मानता है, अवतार मानता है, तो हमारे हजरत मोहम्मद नबी ने एक गाय को मारकर जीवित किया था, हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को शब्द यानी वचन से मारा था और वचन से ही जीवित कर दिया था, इतनी उनमें शक्ति थी। गरीबदास साहेब जी ने लिखा है कि मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, और शब्द फेर जवाई गोसत नहीं खाया, हंसा राख्या गोसत नहीं खाया भाई, ऐसे पीर मोहम्मद भाई कि तुम नकल तो करते हो हजरत मोहम्मद जी की। गरीबदास साहेब ने कबीर परमेश्वर की महिमा से परिचित होने के बाद बताया उनके ज्ञान को सुनकर के मारी गऊ शब्द के तीरम, सब वचन रूपी तीर से वचन से गाय को मारा था हजरत मोहम्मद जी ने और शब्द फेर जवाई वह शब्द से जीवित की थी, और उस महापुरुष ने उसका मांस नहीं खाया, वो गाय को जीवित कर दिया था, उसका जीवन रक्षा की थी, और तुम गाय को मारते हो और खाते हो, उसको कलमा पढ़कर पवित्र मानकर मांस खाते हो, ये तुम्हारी अपनी दंत कथा है। तो इस दृष्टिकोण से सिकंदर लोधी ने कहा कि हमारे हजरत मोहम्मद नबी थे, उन्होंने गाय को जीवित कर दिया था मार के शब्द से, तो आप जीवित करके दिखाओ तब मैं तेरी प्रभुता को मानूंगा। ज्ञापन कऊ वो गाय जो थी गर्भवती थी और आठवां सातवां महीना लग्या हुआ था उसको, अभी ब्याने में थोड़ा सा समय था, वह गाय काट दी पेट के बल से, बीच में तलवार मार के चार टुकड़े हो गए मां बेटे के, बच्चा था गर्भ में। तब परमात्मा ने कहा कि कबीर परमेश्वर ने कहा कि परमात्मा की पहचान करने के लिए केवल इतनी ही परीक्षा काफी नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि गाय को जीवित कर देने मात्र से प्रभु मान लिया जाता है। तो फिर उन परमात्मा ने वो दोनों मां बेटियां गए, एक एक थपकी दी नौकर के चुटकी के देकर, एक मिनट में वो जीवित कर दिए और गाय के नीचे वो बच्चे को लगा करके और दूध की बाल्टी भर दी। तब कहा था गौ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी मत बहा, कह कबीर इसके घी दूध को ये सब ही आत्म खा। जिस ममड़ी का जिस माता का दूध पीवत हो और मक्खन दूध मक्खन घृत बहु खाई और उसको फिर तुम कत्ल कर तो लेकर कर्द कसाई। जिस गऊ को तुम मां कहते हो, जिसका तुमने दूध पी लिया वो मां हुई, और उस मां का फिर तुम कत्ल करते हो, मांस खाते हो, लेकर कर्द कसाई। जिस ममड़ी का दूध पीवत हो, जिस मम्मी का मां का तुम दूध पीवत हो और दही घृत बहु खाई और उसको फिर तुम कत्ल करो, लेकर कर्द कसाई। अब उस टाइम कौन बोला है, सबकी घिघी बिंदरी, क्योंकि सामने गाय बच्चा जीवित करके मालिक ने दूध की बाल्टी ठोक रखी और सिकंदर लोधी भी कांपने लग गया। फिर परमात्मा खड़े हुए, हम ये लखला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक दनी हमरा नाम कबीर, मैं वो अल्लाह अकबर हूं, मैं वो कबीर अल्लाह हूं जिसको तुम अल्लाह बड़ा कहते हो, मैं वही अल्लाह बड़ा हूं, मैं वही अल्लाह कबीर हूं, मैं वही भगवान हूं, पूर्ण परमात्मा हूं। फिर उसमें तो सारे सिकंदर लोधी मान गया, चर्चा करण की और गोष्ठी और उसमें ना नुकर करण का कोई समय नहीं था उसके पास, और परमात्मा इतना सुंदर तेजो में और लंबा शरीर आकाश से मिला हुआ दिखाई दिया। तब सिकंदर लोधी ने चरणों में प्रणाम किया और परमात्मा को पालकी में बैठाकर, साथ में उनके माता पिता को अलग अलग पालकियों में बैठा करके और उनके आदर सत्कार के साथ बैंड बाजे बजा के उनकी झोंपड़ी तक छोड़कर आए। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब उसके पश्चात क्या होता है, अब कहते हैं ना, पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, जैसे कर्म करेगा वो फल तो तुझे मिलेगा ही मिलेगा। कब तक मिलेगा, जब तक आप पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते। जैसा भी आपने सुना था कि मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुर मेट कर ऊपर मारा मेख। तो सिकंदर लोधी प्रभावित बहुत हुआ, लेकिन ये नकली गुरु नकली पीर ये डुप्लीकेट महर्षि ये हमेशा इस जनता के शत्रु रहे हैं और ये भोली जनता इन पर बहुत विश्वास किया करती रही है कि ये जो कह रहे हैं सही है। जब वहां परमात्मा ने सबके समक्ष गाय को जीवित कर दिया, बच्चे को भी जीवित कर दिया, दूध की बाल्टी भर दी और दूध पिया गट गट औरों को भी पिलाया, तो उसको सिकंदर लोधी भी प्रभावित हुआ, लेकिन वो नकली पीर जो शेख तकी था उसका शत्रु था, वो पीर नहीं था, गुरु नहीं था, वो गुरु के रूप में एक शत्रु था। जैसे ईसा मसीह जी ने यही शब्द उच्चारण किए थे कि जिनको तुम अपने निकटतम जिनको तुम अपने गुरु मानते हो, ये तुम्हारे सामने तुम्हें बहुत अच्छे नजर आते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, ये भेड़ की रूप भेड़ की शक्ल में ये भेड़िए हैं जो तुम्हारे जीवन को खा रहे हैं। इन्हीं बातों से दुखी होते हो करके उन गुरु लोगों ने उसमें अशिक्षित समाज था और भ्रमित कर दिया, और उस पुण्य आत्मा को क्रश करवा डाला। आज वही सती थी, इस दास के साथ चल रही है, लेकिन अब समाज शिक्षित है और हिंदुस्तान स्वतंत्र है। इन लोगों की वो दाल नहीं चल पाई और नहीं गल पाई और ना ही गलेगी। अगर आज से 50-100 साल पहले शुरू होती है ये मार्ग, तो दास का हफ्ते पहले पता नहीं टुकड़े कहां मिलते, राख बन जाती। परमात्मा ने ऐसे समय में शुरू करना था, सुनियोजित था प्रभु का कि ये समय आ गया है, समाज शिक्षित है, ज्ञान और शास्त्र हमारे साथ हैं, इसलिए इन भ्रमित करने वालों का दाव नहीं लग पाया। हालांकि इन्होंने तो अपने तरफ से पूरा काम कर दिया था कि ऐसा काम कर दो, झूठा केस बनवा दिया, जबकि हमारे आश्रम पे आक्रमण हुआ करो था, मैं उनको तो इनाम दे दिया, ये देखो यहाँ के काल के इस कलियुग के न्यायकारी राजा जो आक्रमण करने आए, कानून हाथ में लिया, उनको तो इनाम दे दिया, उन पे कोई केस नहीं करने को तैयार, और निर्दोष जो अपने आश्रम में बैठे थे चुपचाप उनके ऊपर आक्रमण किया, और ना जाने किन कारणों से उनको गोलियों से, पुलिस की गोलियों से घायल हुए हैं। और अब स्पष्ट हो गया है उस CPCFSL रिपोर्ट से, मधुबन की लैब ने स्पष्ट कर दिया कि आश्रम की गोलियों से वो व्यक्ति नहीं मरा, और उसके मरने की दूरी, गोली चलने की उनकी दूरी 20 फुट की है ज्यादा से ज्यादा, जबकि आश्रम से जहां वो पुलिस ने जो केस बनाया है उसमें जहां लड़के की मृत्यु स्थिति दिखा रखी है, आश्रम से 140 फुट की दूरी पर है। और भी बहुत से कारण हैं। इस दास के बंदूक लगा रखी थी, जो हमारा सेवक वहां पर था भी नहीं, मधुबन अपनी कोई ट्रेनिंग पे गया हुआ था, वो बंदूक प्रयोग ही नहीं की किसी ने, वो चली नहीं थी, वो मेरा लगा दी जूठी कि बंदूक लिए बांध दे खड़ा था बंदूक, ऐसे नकली ड्रामे बनाए इन लोगों ने। रिपोर्ट में आया कि वो बंदूक से गोली कभी चली नहीं, हम टेक्निकल रूप से बता नहीं सकते कब चली, अर्थात इस कांड के दौरान यह बंदूक चली ही नहीं है। परमात्मा ने चारों तरफ से उनको फिट्टे मुंह कर दिया, कहते सांच को आंच नहीं होती। तो उसमें उन गुरुओं की बहुत चला करती थी, भोली भाली जनता थी, उन पाप आत्माओं को ये अच्छे अच्छे मनुष्य अच्छे व्यक्ति मानते थे, राजा लोग भी उनको अच्छे मानते थे। अब हमारे वो झूठा केस बनाकर इन्हों जेल में भी डाल दिया, सारे काम कर दिए, लेकिन अब हमारा जो का तो वो जितने भी बच्चे थे वो ऐसे तोते की तरह पढ़ा रखे थे, तत्व ज्ञान से परिचित थे, आज और बढ़कर आ रहे हैं, हजारों की संख्या में और नाम ले लिया और ज्यादा जुड़ गए। इसलिए अब ये मार खाने वाला समय नहीं है, पहले ऐसा हुआ करता था, हो जाता था। अब उन लोगों ने क्या कहा, उस शेख तकी ने सिकंदर लोधी से कहा कि ये जादूगर है, जादूगर, इसने ये जंतर मंतर जानता है और गाय को जीवित कर दिया, ये कोई अल्लाह, ये कोई नबी नहीं माना जा सकता। और देखो अब राजा भी भोले भाले होया करते, मान गए भाई ठीक है, 20-30 और गवाह बना लिए उसने, अग्योता जी ऐसे जंतर मंतर ऐसे होते रहते हैं, ये तो ऐसा था वैसे कर दिया, ये कुछ नहीं है, पाखंडी है, डोंगी है, ये तो जादूगर भी दिखा देते हैं, ऐसे अपना शरीर को काट कर भिन्न भिन्न करके फिर जोड़ देते हैं। अब राजा ने सोचा भाई ऐसा भी होगा, चलो ठीक है जो भी है। कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के उपरांत सिकंदर लोधी के किए हुए कर्म, प्रारब्ध का जो कर्म था, जो पाप कर्म था, उदय हो गया। उस पाप कर्म के उदय होने से सिकंदर लोधी को एक जलन का रोग हो गया। वो जलन का रोग कैसा होता है कि जैसे किसी का अग्नि पर हाथ पैर रखा जाए और उसमें जितनी भयंकर पीड़ा होती है, ऐसा पूरे शरीर में दर्द पीड़ा होती है, लेकिन कहीं से जला हुआ नजर नहीं आता, पीड़ा उतनी ही होती रहती है। सिकंदर लोधी को बहुत भयंकर पीड़ा होने लगी, जलन का रोग कहा गया। अब उसके जंतर, उसके ट्रीटमेंट के लिए वैद बुलाए, एक से एक उत्तम वैद, जहां भी राजा को किसी ने बताया उसी को बुलाया, मुंह मांगा, इनाम दिया, साथ में पैसे भी उसको जो मांगता था वो दिए, लेकिन सभी असफल रहे। फिर आध्यात्मिक तरीका अपनाया, अपने पीर शेख तकी से भी जंतर मंतर करवाए, और भी किसी ने कहीं कोई सिद्ध, कोई तावीज बांधने वाला, कोई ये तांत्रिक विद्या जानने वाला सभी बुला डाले, सबसे अपना आध्यात्मिक उपचार भी करवाया, लेकिन सभी व्यर्थ रहे। अंत में ये ज्योतिषी और ये जो बड़े बड़े सिद्ध लोग थे उनके पास ले जा, उनको बुलाया गया, उन्होंने बताया कि श्री राजा ये आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है, आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ कष्ट है, इसको किसी भी उपचार से, किसी भी आध्यात्मिक क्रिया से, किसी भी दाम जाप से नहीं समाप्त किया जा सकता, ये तीन ताप के अंतर्गत आता है। उस समय सिकंदर लोधी की स्थिति हो गई थी कि अब तो ये मृत्यु के साथ ही तेरी पीड़ा समाप्त होगी, ये मान चुका था। एक दिन परमात्मा की प्रेरणा हुई, किसी व्यक्ति ने जाकर के एक राज दरबारी को बताया, एक अधिकारी को ये बात बताई कि ऐसे ऐसे बनारस के अंदर एक बहुत बड़े महात्मा है, उनका कबीर नाम है, और वो ऐसे महान आत्मा हैं कि वो जो चाहें सो कर सकते हैं, उनकी कृपा हो जाए तो इस आपके राजा की पीड़ा को वो पल में समाप्त कर सकते हैं। अब उस अधिकारी ने राजा के सामने कहा, राजा ने कहा भी जो भी है जैसा भी है अब ये ट्रीटमेंट करवाना है, तो उनका ये फैसला, उसमें राजा का कुछ बनारस में जाने का, काशी जाने का भी प्रोग्राम बना हुआ था, तो राजा ने कहा कि बहुत अच्छा हो गया है, हम उधर जा ही रहे हैं और वहां भी उस संत से भी हम ये अपना ट्रीटमेंट करवा लेंगे, जो भी जैसा आध्यात्मिक है, जैसा भी कोई वैद्य है। तो राजा वहां से चल दिया, सिकंदर वीर सिंह बघेल वहां के जो नरेश थे, काशी नरेश को संदेशा भिजवा दिया गया कि राजा आ रहे हैं, सम्राट आ रहे हैं दिल्ली के। जैसे आजकल मंत्रीगण, मुख्यमंत्री जी आते हैं किसी शहर में, तो वहां का रेस्ट हाउस बुक करा दिया जाता है, रेस्ट हाउस, राज दरबार, राजभवन बोलते हैं इसको। तो उस राजभवन रेस्ट हाउस में वीर सिंह बघेल, राजा ने पूरी व्यवस्था सम्राट के लिए कर दी, ठहरने की, खाने पीने की व्यवस्था बनवा दी। अब जो ही वो सिकंदर लोधी वहां पहुंचा, वीर सिंह बघेल ने खाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर आइटम, काजू, किशमिश, सेब, संतरे, केले, दूध के गिलास सब जगह मेज के ऊपर जो ना सजा दिए, और कहा राजन जलपान कीजिए, आप यात्रा से चलकर आए हो, थक गए होंगे। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह मैं धन्यवाद करता हूं आपकी मेहमानी का, आपकी मेजबानी का, आपके आदर सत्कार का मैं धन्यवाद करता हूं, लेकिन मैं खा कुछ नहीं सकता, मुझसे कुछ नहीं खाया जा सकता, मैं तो अंतिम श्वास गिन रहा हूं, देखो मेरा शरीर कितना पतला दुबला बन गया है। तब उसने पूछा क्या बात है राजन, बादशाह ने बताया कि मेरे एक बहुत भयंकर पीड़ा है और इसका कहीं पर भी कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, ना कोई आध्यात्मिक, ना कोई वैदिक तरीके से कोई भी नहीं कर पा रहे हैं, आयुर्वेद से भी नहीं हो रहा है, किसी प्रकार से नहीं। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह आप जानते होंगे यहां कोई कबीर नाम का संत रहता है। अब राजा की इतनी बुद्धि कमजोर होती है, उसको तो जब वो मिले थे उनको, उस समय वो बात भी याद ना रही, कोई गाय जीवित करी थी, कौन था, इतना समय नहीं, वो घबरा गया, उनको फटाफट वहां से भेज दिया आदर सत्कार के साथ कि तो सिद्ध पुरुष है, कहीं तुझे गड़बड़ ना कर दे, शराब स्वरूप ना दे दे। और बाद में वो शेख तकीन व माटी ऊपर का सुहागा मार दिया उसके ऊपर, और पट्टी पोच दी, अक वो तो जंतर मंत्र करने वाला जादूगर था, फिर जादूगर ने याद कौन रखे। तब उसने सिकंदर लोधी ने जब ये बात कही कि आपके यहां कोई कबीर नामक कोई संत है, आप जानते होगे, अगर वो उसको कृपा है, बुला कर लाओ। अब शेख सिकंदर वीर सिंह बघेला परमात्मा से परिचित था, उनका शिष्य हो चुका था कबीर परमेश्वर की शक्ति से परिचित होकर के। जो काशी नरेश था वीर सिंह बघेल, वो कबीर जी का शिष्य था और परमात्मा की शक्ति से पूर्ण परिचित था कि ये पूर्ण परमात्माए हैं और सारी सृष्टि के मालिक हैं, लोग इन्हें पहचानने में गलती कर रहे हैं। तो शेख सिकंदर लोधी ने जब ये कहा कि कोई कबीर नाम का यहां संत बताया है, उसको भी दिखा लेते हैं। वीर सिंह की आंखों में पानी भराया और कहा कि राजन, अब आप ठीक ठिकाना आ गए हो, अब आपका रोग नहीं रहेगा। इस बात को सुनकर सिकंदर ने कहा कि आप शीघ्र बुलाओ उसको। तब सिकंदर से वीर सिंह जी ने कहा कि हे राजन, जो आज्ञा आपकी वही होगा। एक अर्ज है दास की कि कहते हैं संत को बाय ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, सब इच्छा से वो आ जाए वो दूसरी बात है। ऐसे परम संत से जिससे हमने वो उम्मीद है कि जो कहीं पर भी कोई उसका उपचार नहीं है, कोई भी उसका समाधान नहीं है, जिससे हम ये इलाज करवाने की चेष्टा कर रहे हैं, और उसको हम बाय ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, ऐसा लिखा है सदग्रंथों में। और संत के पास स्वयं जाकर के विनम्र भाव से प्रार्थना करनी चाहिए, तब वो प्रसन्न होकर के अपनी कृपा बख्शेंगे तो राहत मिलेगी। यदि हम उसको उनको बाय ऑर्डर बुला भी लेंगे और उन्होंने आकर के हमारे ऊपर रजा नहीं बख्शी, वो महसूस कर लेंगे कि इन्होंने मुझे जानबूझ के बुलाया, तंग करने के लिए बुलाया, अपनी शक्ति के द्वारा मुझे बुलाया है, और यदि उन्होंने रजा नहीं की, उन्होंने मेहर नहीं की, उनके आने से कोई लाभ नहीं होगा। अब सिकंदर लोधी कहते मरता क्या नहीं करता, अब वो भी समझ गया, धार्मिक व्यक्ति था, कहने लगा भी कोई बात नहीं, इतनी दूर आगे 800 किलोमीटर दिल्ली तय, और 2 किलोमीटर और चलेंगे, और मत बुलाना, मैं खुद और पैदल चलूंगा। अब वीर सिंह जी को कबीर परमेश्वर जी की दिनचर्या का खूब ज्ञान था, उनको पता था कि यह शाम का समय है, इस समय कबीर परमेश्वर अपनी झोंपड़ी पर ना मिलके स्वामी रामानंद जी के आश्रम में जाते हैं, वहां संध्या आरती करते हैं, संध्या आरती के उपरांत वो वापस आते हैं। तो वीर सिंह बघेल जो है राजा सिकंदर लोधी को साथ लेकर सैकड़ों सैनिक साथ बॉडीगार्ड और रामानंद जी के आश्रम के सामने पहुंच गए। वहां द्वारपाल जैसे गेट कीपर गेट पर खड़ा था, द्वार पर एक सेवक खड़ा था, उस सेवक से वीर सिंह बघेल ने कहा, क्योंकि वीर सिंह बघेल रामानंद जी के नखरों से परिचित था, वो नखरे करता था कि मुसलमानों के विषय में ऊट पटांग बातें भी करता था और मुसलमानों को एक हे जानता था स्वामी रामानंद जी, और वो कबीर परमेश्वर जी के वैसे तो शिष्य हो चुके थे, लेकिन परमात्मा की आज्ञा से उनको कहा गया था कि आप मेरे गुरु बने रहना संसारिक दृष्टि में, नहीं तो आने वाले समय में ये नकली लोग जो हैं संत ये कहा करेंगे कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, और काल का दाव लग जाएगा। इस दृष्टिकोण से रामानंद जी वैसे सामाजिक तौर पर थे गुरु थे, और आंतरिक मामले में वह शिष्य थे कबीर परमात्मा के। फिर भी हम यहां संसारिक जो व्यवस्था है उसको लेकर चलेंगे। तो वीर सिंह बघेल भी वहां जाते थे, वीर सिंह बघेल को पहरेदार यानी परमात्मा रामानंद जी के जो ऋषि शिष्य थे वो जानते थे, पहचानते थे, और वीर सिंह भी ये जानता था कि सिकंदर लोधी मुसलमान है, जय मैं इसको सीधा भीतर ले गया तो रामानंद जी मेरे से नाराज हो जाएंगे और मुझे कोई शराप ना दे दे, को वचन ना कह दे। इस दृष्टिकोण से अपना पीछा छुटवाने के लिए उसने पहले ही आज्ञा मांग ली कि स्वामी रामानंद जी से हमारी प्रार्थना करना। वीर सिंह ने उस गेट पर खड़े सेवक से कहा कि स्वामी रामानंद जी से प्रार्थना करना कि सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह आपका दर्शन करना चाहते हैं और कबीर जी से मिलना चाहते हैं। जब तक वो उस पहरेदार से ये पूछा था सेवक से कि कबीर जी हैं क्या उपस्थित आश्रम में, तो सेवक ने कहा था कि कबीर जी अभी आए नहीं हैं। कितनी देर में आएंगे, वीर सिंह ने पूछा। सेवक ने कहा कि उनकी मौज है, समय तो हो गया आने का, आए तो अब 10 मिनट में आ जाए, नहीं तो घंटा आध घंटे में तो आएंगे ही आएंगे, अवश्य आते हैं। तब वीर सिंह ने कहा था कि आप रामानंद जी से एक आज्ञा लेना कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी, ये मुसलमान सम्राट हैं, ये आए हुए हैं और इस कबीर जी से मिलना चाहते हैं, तब तक आपके आश्रम में आपके दर्शन और यहां विश्राम करना चाहते हैं। अब सेवक अंदर गया, सेवक ने जाकर स्वामी जी से कहा कि ऐसे ऐसे वीर सिंह बघेल के साथ दिल्ली के बादशाह मुसलमान सम्राट सिकंदर लोधी आए हैं, वो कबीर जी से मिलना चाहते हैं और तब तक आपके यहां आश्रम में अंदर आना चाहते हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। अब रामानंद जी से जी मुसलमानों से बहुत चिढ़ते थे, वैसे तो वो पहले जाति पाति में भी बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे, लेकिन परमात्मा ने एक ऐसी लीला की थी उनके साथ, वो जाति पाति यानी हिंदू धर्म में जो भी जाति पाति थी उसको नहीं मानते थे, लेकिन मुसलमानों को फिर भी वो हे समझते थे। अब एक परमात्मा पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने एक शिकार में एक तीर में कई शिकार करने थे, रामानंद जी का भी भ्रम तोड़ना था और सिकंदर लोधी का भी वह आकड़ काटनी थी। अब सिकंदर लोधी के विषय में रामानंद जी ने सुना, रामानंद जी कोपित होकर क्रोधित होकर बोले कि उस कह दिया मुसलमान के लिए इस आश्रम में स्थान नहीं है और बाहर इंतजार करें। इस आवाज को जो कड़के की आवाज रामानंद जी ने कही बार सिकंदर लोधी भी सुन रहा था, कहीं साथ में ही उनका आसन था। कहते उनको उनके लिए कोई स्थान नहीं है इस आश्रम, मुसलमानों के लिए बाहर इंतजार करें, ऐसे ऐसे एक दो अपशब्द भी बोले। अब सेवक ने आकर कहा कि स्वामी जी ने मना कर दिया है और कहा कि मुसलमानों के लिए इस आश्रम में कोई स्थान नहीं है, चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो। अब सिकंदर लोधी पहले तो दुखी था अपने दुख तय, और बीमार आदमी में चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है तो और गुस्सा उसका तो 100 पर पारा गया, एकदम क्रोधित हो गया और तलवार निकाल ली अपने कमान तय उसने म्यान तय, और मन में ये विचार किया एक महाराजा को एक दिल्ली के सम्राट को ये ऐसा व्यवहार करता है इसके सम्राट के साथ, तो आम मुसलमानों के साथ इसका क्या व्यवहार रहता होगा, ऐसे पाप आत्मा को खत्म कर देना चाहिए। इब्राजा ने कौन कलम पकड़ा उसकी कौन हाथ पकड़े निकाल कर तलवार चल पड़े आगे, वो तो मर्यादा थी, शेष ने हाथ जोड़े भाई नहीं जाना है और उसको ऐसे फेंक दिया, शेष एक तरफ पड़ गया जाके। अब वहां कौन से तो वाले खड़े थे राजा से मुकाबला कर ले, राजा पहुंच गया और वो रामानंद जी अपने आसन पर बैठे थे, ऐसे जाते ही उन्होंने गर्दन काट दी तलवार तय स्वामी रामानंद जी की, धड़ कहीं गिरा और शीश कहीं पड़ा और रक्त बहकर चल पड़ा। उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया गया, सब पर अलग और गर्दन पर अलग, और सभी के सभी सेवक थे वो बेचारे तितर बितर हो गए, छुप गए, डर गए, इधर उधर कांप रहे हैं कहीं हमारा भी नंबर ना आ जावे। अब सिकंदर लोधी ने जब ये पाप कर लिया फिर आंख खुल गई, अब वो धार्मिकता जो उसके अंदर थी वह बहा उभरी और मन में विचार उठने लगे कि संत के मारने का बहुत पाप होता है, आया था पाप नष्ट करवाने के लिए, पाप और भयंकर कमाल करा जो ना इकट्ठा कर लिया। अब अपने आप बड़बड़ाता हुआ कहने लगा चल वीर सिंह मैं बहुत दुर्भागी प्राणी हूं, आया था आशीर्वाद लेने के लिए, कष्ट निवारण करवाने के लिए, अब मैंने कबीर जी के गुरु जी का मर्डर कर दिया, अब वो मुझे साप देगा आशीर्वाद नहीं देगा, भाई निकल चल यहां से, मेरे भाग्य में नहीं है यहां कोई सुख प्राप्त करना, मुझे तो ऐसे भुगत कर ही मरना होगा। देख वीर सिंह, मैं चाहता हूं पुण्य करने, मेरे से होते हैं पाप, ऐसे ऐसे दुर्भाग्य है मुझ पापी का। अब विचार तो अच्छे आने लगे लेकिन वो काम तो बिगाड़ लिया उसने। अब क्या होता, जो ही वो आश्रम से बाहर निकले, वो परम पिता परमात्मा, वो जुलाहा दिन में अपना काम कर शाम ने फिर आरती में हाजरी लगाने जाता था अपने गुरुदेव की, वो आ रहे हैं। अब वीर सिंह जी ने दूर से ही देखते ही कि वो आ गए हैं गुरुदेव। अब राजा की पोशाक में था, सिर पे मुकुट था और जूते उतार रखे थे क्योंकि आश्रम में प्रवेश किया था। उस मुकुट समेत आओ देखा ना ताओ देखा, जमीन के ऊपर लेट कर वीर देव सिंह बघेल ने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया कबीर परमेश्वर को। अब उधर से राजा भी बहुत डरा हुआ था, बहुत घबराया हुआ था कि मैंने ऐसा पाप कर दिया और ये बड़े सिद्ध पुरुष बताए जाते हैं कबीर जी, और यदि मैं प्रणाम नहीं करूंगा तो मैं और पहले अपराध कर बैठा हूं, प्रणाम करने से ही तेरे पे रहम करेंगे। तो दंडवत प्रणाम सास उस सम्राट ने भी किया। अब पुण्यात्माओं, यही वो कहानी है परमात्मा कैसे खेल खेलते हैं। पुण्यात्मा कहते हैं आदिनी के पास है वो पूर्ण ब्रह्म दयाल, हे मान बढ़ाई मारियो हो बे अदबी सिर काल। यदि ये सारी लीला ना होती, अगर यदि सिकंदर लोधी ने रामानंद जी की हत्या ना की होती तो वो प्रणाम नहीं करता, दंडवत प्रणाम नहीं करता परमात्मा को, क्योंकि वो राजा था ना, उसने उपदेश ले रखा था। और फिर मुसलमान और हिंदू को हम बहुत ही अंतर मानते थे, ये भी था कि मुसलमान हिंदू पीर के सामने प्रणाम कर, इस तरह की कई अड़चने हो जाती, और वो होती तो परमात्मा उनको शुभ आशीर्वाद नहीं देते। सिकंदर लोधी का वो तीन ताप नष्ट नहीं होता, एक तीर से कै शिकार किए परमात्मा ने, कितने शिकार किए। अब सिकंदर लोधी घबरा गया, डर गया, उसने दंडवत प्रणाम किया। अब दंडवत प्रणाम करने से परमात्मा ने जो रजा बख्शनी थी वो नियम पूरे हो गए सारे, और आशीर्वाद दिया, दोनों के सिर पे हाथ रखा, कहा उठो ये दो दो नरेश इस कैसे आज दास के पास आना हुआ, दो दो नरेश राजाओं का। अब जो ही परमात्मा कबीर जी ने सिकंदर लोधी के सिर पे हाथ रखा, उठाया भी नहीं था, इतने में वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया, जो उसको भयंकर पीड़ा थी वो नहीं रही। बोलो सतगुरुदेव की, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। अब शेख तक सिकंदर लोधी वही घुटनों के बल बैठकर ऐसे करबद्ध होकर कहने लगा, हे परमात्मा, परमेश्वर ने कहा कि कैसे आना हुआ, कि जिस कार्य के लिए हम आए थे वो तो आपने सिद्ध कर दिया प्रभु, मैं एक भयंकर पीड़ा से पीड़ित था जो कहीं भी किसका उपचार नहीं हो पा रहा था, कोई समाधान नहीं हो रहा था, हे प्रभु आपके, हे अल्लाह आपके हाथ छूने मात्र से मैं स्वस्थ हो गया हूं, आंखों में आंसू ऐसे बहने लगे जो खुशी में बहा करते हैं, और फिर चरण पकड़ लिए छोड़े नहीं, चरणों में शीश रखकर रोने लगा बुरी तरह फूट फूट कर। तब कबीर जी ने, परमेश्वर ने कहा, क्या बात है बादशाह, बात बताओ। सिकंदर लोधी ने कहा कि मैं पापी आत्मा हूं, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, अल्लाह अल्लाह की जात है तू, मुझे माफ कर दो। परमात्मा ने कहा मैंने माफ कर दिया, बात बताया, नहीं मैंने ऐसा अपराध कर दिया, मुझे माफ नहीं कर सकते। प्रभु ने कहा हमने जो कह दिया सो कह दिया, आप बात बताओ क्या है। तब उन्होंने सारी कहानी बताई सिकंदर लोधी ने, वही चरण पकड़े पकड़े कहा, प्रभु मैं एक बहुत पीड़ा से पीड़ित था, भयंकर रोग था मुझे, सब जगह ट्रीटमेंट करा लिया, मुल्लाओं से, काजियों से, हिंदू पीरों से, हिंदू गुरुओं से, हिंदू ऋषि महर्षियों से, तांत्रिकों से, फिर वैद्यों से, मुझे कोई राहत नहीं मिली। सबने कहा था कि तेरे प्रारब्ध का रोग है, ये तेरे तीन ताप के अंतर्गत तुझे पीड़ा है, आजीवन ये कष्ट बना रहेगा, हे प्रभु आपकी कृपा से वो नहीं रहा मेरा। अब मैंने एक और जुल्म कर दिया, मैं अब इस रोग से पीड़ित था, मेरा चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया था, और ऐसे ऐसे हमने स्वामी रामानंद जी से आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा मांगी थी, उन्होंने मुझे अपशब्द कह दिए कि मैं मुसलमानों को देख कर दर्शन भी नहीं करना चाहता, ये मलेच्छ होते हैं, इनको आश्रम आने की अनुमति नहीं दी जा सकती, ये नहीं आएंगे। तो मुझे गुस्सा आ गया और उस क्रोधवश मैंने आपके पूज्य गुरुदेव की हत्या कर दी। हे प्रभु, मैं इतना पापी हूं, पुण्य की तरफ चलता हूं तो मुझे पाप ही मिलते हैं, अब जैसे आप उचित समझो, चाहे इस दास को श्राप दो और चाहे बख्श दो। सब परमात्मा ने कहा, भाई हम तो आम के पेड़ हैं, आम के पेड़ का कांटे नहीं होते, आम मिलेंगे क्या छाया मिलेगी, और फिर सूखे पास लाकड़ी लकड़ी मिलेगी, हम बबूल नहीं है, हम वो सिद्ध पुरुष नहीं है जो छोटी सी बात पर के शराब दे देते थे तेरा नाश होगा, जैसे बैतरक सोनी एक सैकरी चुनकर सी सर एक दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। चुनकृषि जी ने बैतरक सोनी सेना वानधाता चक्रवर्ती राजा की अपनी सिद्धि शक्ति से नष्ट कर दी, समाप्त कर दी थी। परमात्मा बोले वह कीकर के पेड़ थे, उन्होंने बबूल तैयार कर रखी थी, और हम आम के पेड़ हैं, हमारे यहां श्राप नहीं है, केवल आशीर्वाद होता है। हाँ, जो जैसे जन्म करेगा उसको फल आप पे मिलेगा, हम नहीं देंगे। तो कहा कि कोई बात नहीं, कोई किसी को नहीं मारता, उस आप उसकी हत्या आप ही के द्वारा लिखी हुई थी, वो इसलिए रामानंद जी मारे गए हैं, उनकी आयु शेष नहीं थी, आपके द्वारा ही वो मारा जाना था, ऐसा प्रारंभ था और आपका दोष नहीं है, ये कोई तेरा और उसका पिछला हिसाब किताब था। और कहा कोई बात नहीं, एक काम कर, आप ऐसे मत जाना, उनका अंतिम संस्कार करवा के जाना, नहीं तो दुनिया तुम्हें थूकेगी। तब सिकंदर लोधी खड़ा हुआ, कबीर जी आगे आगे चल पड़े, परमेश्वर दोनों नरेश पीछे पीछे चलते हैं, और सिकंदर लोधी वीर सिंह की तरफ देखकर कहता है, बोला कि वीर सिंह ये तो सचमुच अल्लाह है, देखो मैंने इनके गुरुदेव की हत्या कर दी, इनके मन में भी नो को नहीं, मेरे प्रति जरा सा भी कोई कोप नहीं किया, ये तो सचमुच भाई महान संत हैं, परम शक्ति हैं। अब वीर सिंह कहता है, राजा ये तो एक ट्रेलर दिखाया आपको, कहने लगा मैं सुखी कर दिया, अरे मेरी इसी ऐसी भयंकर बीमारी थी, कहीं आराम नहीं हो रहा था, और इनकी कृपा से हाथ लाते मैं स्वस्थ हो गया, भाई गदगद हो गया, ओहो मैं तो बहुत दुखी था। तब वीर सिंह कहता ये तो ट्रेलर है अभी इस परमात्मा की शक्ति का, अभी फिल्म देखना आगे आगे चल क्या होती है, जोड़ इस माँ भगवान से आपको क्या क्या देखने और सुनने को मिलेगा। अब वीर सिंह और वो दोनों राजा ऐसे बोलते हुए जा रहे थे, और वहां से जब कबीर जी अंदर प्रवेश करते हैं रामानंद जी के आश्रम में, वहां के शिष्य भाग्य आए, कहने लगे कबीर जी सिकंदर लोधी ने अपने गुरु जी को मार दिया, मुसलमान ने मार दिया। अब परमात्मा को पता था ये आग लगाओगे हिंदू और मुसलमान का भी, एक और कुक्रम करवाओगे, लड़ाई करवाएंगे, तो परमात्मा ने कहा रे कौन किसने मारा भाई, अपने गुरुदेव का संस्कार ऐसा ही था, और ये तो इनके इनके द्वारा ही मारा जाना था। और फिर इन्हें कहने लगे अरे बोले आदमियों तुम क्या ज्ञान सुनते हो, संत कभी मरता है क्या, ये शरीर तो माटी में मिल जाता है, संत थोड़ा ही मरता है। तो ऐसे ऐसे ज्ञान दे करके सभी मायूस बहुत गने हो रहे थे, फिर क्या सब जब देखा परमात्मा ने धड़ एक तरफ पड़ा है, शीश कहीं पड़ा है, जब जाकर के दंडवत प्रणाम किया कबीर परमेश्वर ने स्वामी रामानंद जी के चरणों की तरफ, और खड़ा होकर के हाथ लगाया, कहा गुरुदेव जागियो गुरुदेव, संजारती का समय हो गया है। अब ऐसा ही कहा था, उसी समय वो शीस वहां से चला और रामानंद जी की धड़ के ऊपर लगा, रामानंद जी जीवित हो गए, बैठ गए, बोलो सतगुरुदेव की जय। अब रामानंद जी ने सामने वही सिकंदर लोधी मुसलमान खड़ा दिखाई दिया, लाल आंख फेर कर ली, ऐसे ही गर्म फेर होता नजर आया। फिर देखा सामने के रक्त की और दूध की दो धाराएं उनके शरीर से निकल रही थी, एक लहू की और एक धारा दूध की चल रही थी जहां उनका वो कत्ल हुआ था। तब सिकंदर लोधी से नजर हटा के कबीर जी के ऊपर दृष्टि रामानंद जी की गई। रामानंद जी को पता चल गया कि तेरा कत्ल कर दिया गया था और तू कबीर जी ने जीवित किया है। तब कबीर परमेश्वर से पूछा कि हे भगवान, एक कृपा करो मुझे बताने कि मेरे शरीर से दूध और आधे से खून क्यों निकला, ये रक्त क्यों निकला, सारा दूध ही होना चाहिए था या सारा खून ही होना चाहिए था। तब परमात्मा ने कहा, स्वामी जी आप जानी जान हो, अंतर्यामी हो, मुझसे क्या पूछ रहे हो, आप सब जानते हो। जैसे गुरुदेव के सामने हमने बोला जाता है, वचन करने होते हैं, इस दृष्टिकोण से प्रभु ने कहा। फिर बताया कि आप पहले हिंदू अन्य जाति वालों को, हिंदुओं को भी हे दृष्टि से देखा करते थे, उनका आदर नहीं करते थे, आप उनको भिन्न समझते थे, और आज आप अभी तक आप इतना तो हो गया कि आप हिंदुओं को तो एक मानने लगे, लेकिन मुसलमान को आप आज भी भिन्न समझते हो। प्रभु अभी आप मोक्ष के काबिल नहीं हुए थे, इसलिए आप में अभी मलिनता शेष है, इसलिए आपका पूर्ण रूप से खून दूध नहीं बना, आप पवित्र नहीं हुए। हिंदू और मुसलमान एक पिता की संतान है, भिन्न भिन्न नहीं है। रामानंद जी एकदम शर्मिंदा बहुत हुए, चरणों बहुत ही, और राम उस सिकंदर लोधी को खड़ा होकर के और सीने से लगा लिया, कहा बेटा मेरे से भूल होगी, मैं सचमुच मंदबुद्धि का व्यक्ति हूं, मैं अभी भी हिंदू और मुसलमान को दो मानता था। और उसी समय कबीर परमेश्वर के भी चरणों को छुआ, प्रभु ने कहा कि नहीं आप मेरे गुरु हो, ऐसा ना करो। तब उसके बाद रामानंद जी ने कहा कि आज के बाद हिंदू और मुसलमान मेरे अपने ही बच्चे होंगे, मेरे अपने भाई बहन हैं, मैं कभी नफरत नहीं करूंगा। बोलो सतगुरुदेव की। इस प्रकार उस परम पिता ने एक ही तीर से कई शिकार किए। तब सिकंदर लोधी ने कहा, विचार सोचा अपने मन में कि क्यों ना ऐसे महापुरुष को मैं दिल्ली ले चलूं और वहां के लोग इनके विचारों को, इनकी शक्ति को सुनकर ये आपस का झगड़ा मिट जाएगा, हिंदू और मुसलमान का ये खाई खत्म हो जाएगी, ये दीवार ढह जाएगी ऐसे महापुरुष के ऐसे विचार सुनकर। इस दृष्टिकोण से परमात्मा से प्रार्थना दिल्ली चलने के लिए की। बोलो सतगुरुदेव की जय। शेष सत्संग शाम को सुनाएंगे।